वह हुआ लजी यरसुल रिया। अब ये वाली एक आयत है जो हमें अल्लाह ताला ने दुनिया से एक मिसाल देके इस चीज़ को हमारे सामने प्रूव किया है कि इसी तरह मुर्दे भी क़यामत के दिन ज़िंदा होंगे। जैसे ये बात, ये सूरतुल आराफ मक्की सूरत है ना, और ये बात मक्कन को बहुत ही मुश्किल थी अंडरस्टैंड करनी कि कैसे होगा कि इंसान उठ के खड़ा हो जाए क़यामत के दिन, वो जो ज़र्रा ज़र्रा हो चुका है। तो उसको यहाँ पे एक दुनिया की मिसाल से समझाया गया। वह अल्लज़ी युरसिलु रियाह, वो अल्लाह ही है जो भेजता है हवाओं को बुशरा, खुशखबरी बना के। अल्लाह ताला हवाओं को भेजता है, जैसे जो बैना यदई रहमती ही, उसकी रहमत के आगे, अपनी रहमत के आगे आगे हवाओं को अल्लाह ताला भेजता है। अच्छा, अब क्या है अल्लाह ताला की रहमत? अल्लाह ताला की रहमत है बारिश, यानी बारिश से आगे आगे अल्लाह ताला हवा भेजता है। आपने देखा ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, बादल आ जाते हैं, वो जो हवा होती है ना, वो जो हवा है ना, उसका मज़ा ही और है। एक वैसे हवा चल रही होती है, वो डिफरेंट होती है। एक वो जो बादल आ जाते हैं, अभी बारिश शुरू नहीं हुई लेकिन वो इतनी खूबसूरत हवा चलती है कि वाकई इंसान का दिल चाहता है इस हवा को इंजॉय करें। इस हवा के अंदर दो फ़ायदे हैं इंसान के लिए। एक तो वैसे ही देखिए हमारे लिए कितनी राहत का सामान है ना ये, दिल भी खुश हो जाता है उससे, ऐसे लगता है बस अभी बारिश होने वाली है, इंसान बाहर निकल जाता है, खिड़कियाँ खोल लेते हैं आप, तो वो आपके लिए बड़ी एक आपके लिए प्लेजेंट चीज़ है। फिर दूसरी इसके अंदर क्या है, अल्लाह ताला पहले पहले मैसेज भेज देते हैं कि बारिश की इतला तुम्हें हो जाए, ताकि अगर तुमने कोई सामान या कोई चीज़ अपनी चीज़ें कोई अंदर रखनी है, कोई जानवरों को अंदर करना है, तो इंसान वो कर सके। देखा है हमने वहाँ पे, तो आपने देखा हमारे मुल्कों में वो हवा चलती है, पता चलता है अब बादल आ गए हैं, हवा चल रही है, तो फौरन लोग कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं तारों से, है ना, तो चारपाइयाँ उठाना शुरू कर देते हैं, बारिश आ रही बारिश आ रही। तो अल्लाह ताला पहले पहले खुशखबरी देने वाली हवाएं भेज देते हैं, तो दोनों पर्पज़ हो गए ना इसके। अब वो क्या होता है, अपनी रहमत से पहले, इसका मतलब बारिश अल्लाह ताला की रहमत है, हाँ कईयों के लिए अजाब भी बन जाती है, मगर अल्लाह की वैसे ये एक रहमत है, इसीलिए इस टाइम पे दुआएं भी कबूल होती हैं जिस वक्त बारिश हो रही है। और ये बारिश हर जगह इतनी ऐसी अल्लाह की रहमत है, हर एक पे आम है, काफिर है, मोमिन है, कोई भी है, या दरिया है, पहाड़ है, बंजर ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, सब पे बरसती है। हत्ता इदा अकलत सहाबन, यहाँ तक कि जब उठा लेती हैं बादल, कौन, हवाएं, हवाएं जब बादल उठा लेती हैं, क्योंकि हवाओं की बात हो रही ना पहले रियाह की, थिकालन बोझल, बादलों के ऊपर कितना बोझ होता है, बादलों ने कितना टनों पानी, आप देखते हैं कई दफ़ा बारिश शुरू होती है, होती जाती है, सारा दिन बारिश होती है, अगले दिन तक बारिश होती रहती है, कितना पानी था, आप बाल्टी अगर रखते हैं तो वो फुल हो जाए, टब रखते हैं वो भर जाएगा, लाखों टनों पानी, ये तो इतनी सी जगह में इतना जमा हो गया, लाखों टनों पानी बादल ने उठाया होता है, और आपने अगर इतना पानी ऊपर चढ़ाना हो, आप मुझे बताएं क्या करेंगे, कुछ जहाज आपके शायद लेकर जाएं ऊपर ताकि वहां से स्प्रिंकल करें, कैसे करेंगे, लाखों टनों पानी तो नहीं उठा के लेके जा सकते, लेकिन देखो हवा कितनी लतीफ सी चीज है, लेकिन वो बादलों को जैसे ड्राइव कर रही है, सुकना हो हम भेजते हैं उनको, हांकते हैं बादल जो है ना, वो हवा उसको ड्राइव करती है इतने भारी बादल को, यट आप देखें यहाँ पे वो इतने भारी बादल हैं, कोई उनको वहाँ पे कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला नहीं है कि इधर को GPS लगा हुआ है, इधर को जाओ उधर को जाओ, देखो सुबहान अल्लाह, अल्लाह का हुक्म होता है ना, तो हवा को भी, हवा के पास भी कौन सा GPS है, हवा बादल को ड्राइव कर रही है, लेके जा रही है, कैसे लेके जा रही है, किधर पहुंचना है, जहां पे अल्लाह का हुक्म हो, लिबलदिन मय्यतिन, मुर्दा जमीन की तरफ, जिधर अल्लाह ताला ने का हुक्म है कि यहाँ पे जाके बरसो, वहीं वो बरसेगा। आपने कई दफा देखा होगा बादल हमारे ऊपर आके खड़े होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, मतलब साफ हो जाता है, कोई बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसता, कि अल्लाह का हुक्म नहीं था यहाँ पे। अल्लाह हू अकबर, ये अल्लाह का कैसा निजाम है, इसमें پھر پیچھے چلانے والا جو رب ہے وہ ہمیں نظر نہ آئے تو بھی تو کم عقلی کی بات ہے نا. آج ویدر چینلز پہ اتنا ویدر کا بتاتے ہیں, اتنا بادل بارش برسے گی, وہ جو پیچھے ہواؤں کو یہ چلانے والا, بادلوں کو چلانے والا, بارش کو برسانے والا جس کے حکم سے برس رہی, اس کا کہیں ذکر نہیں ہوتا. کتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے نا, یہ پورا ایک سسٹم ہے, بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں اس کے اندر سائنس میں, کتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے لیکن کتنی خاموشی ہے. نہ کوئی لڑائی جھگڑا, نہ کوئی طوفان, نہ کوئی اس طرح کوئی کہیں گر پڑ رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں آپ کو نظر آتی. کتنے پیسفلی کام کر رہے ہیں سب, اور کتنا مشکل یہ نظام ہے. دیکھیں کتنی ایک مشکل بات ہے, آپ ٹینکی لگاتے ہیں اپنے گھروں کے اندر کہ پانی کو اوپر کی منزلوں تک پہنچائیں, اور رب نے آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا, کوئی پائپ نہیں لگے ہوئے کہ سمندر سے اوپر پائپ جا رہے ہیں بادلوں تک, آپ اوپر تک کیسے اللہ تعالیٰ بخارات کی صورت میں اوپر کر رہا ہے, کس طرح اس نے یہ سسٹم بنایا. نہ کہیں نظر کچھ آ رہا ہے, نہ کوئی ایسی ہلچل مچ رہی ہے, نہ کوئی شور ہنگامہ ہے, جی یہ کام ہو رہا ہے وہ کام ہو رہا ہے. اور ہم تو اتنا شور کرتے ہیں نا, جہاں پہ کوئی ہمیں زیادہ ایکٹیویٹی ہو جائے تو بس ایک طوفان ہی لگتا ہے کہ مچ گیا. اتنی خاموشی سے ساری چیزیں چل رہی ہیں, اپنے کام کر رہی ہیں, کوئی نہیں بڑائی, کوئی نہیں میرا نام آگے ہو جائے, کوئی بادل آگے جا رہا ہو اور وہ کہے کہ میں پہلے جاؤں گا, اور کوئی کہے کہ تم کو پیچھے کروں, اور کچھ بھی نہیں ایسا ہو رہا. ایک کی ٹانگ کھینچے کہ نہیں نہیں تم نے نہیں کرنا, میں آگے ہوں گا, کوئی ایسا نہیں کر رہا. ہم دیکھیں کیسے جب کام کرتے, دین کا وہ کام بھی کرتے نا, تو یہی حال ہوتا ہے بیچ میں, میں آگے بڑھ جاؤں بس, میرا نام ہو جائے بس, میری واہ واہ ہو جائے, میں سب کو نظر آؤں کس نے یہ کام کیا. اللہ اکبر, اللہ ہمیں آیتوں سے واقعی صحیح سبق لینے والا اور ان پہ عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ تیری کائنات کیسی فرما بردار ہے تیری, اور ہم کیسے نکمے ہیں, ہمارے جو نیکی کے کام ہیں وہ بھی کیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کی طرف بھیجتا ہے, فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ, پھر بس ہم اتارتے ہیں ساتھ اس کے پانی کو, فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ, بس ہم نکالتے ہیں ساتھ اس کے ہر طرح کے پھلوں کو. پھر ہم ایک مردہ زمین کی طرف بھیجتے ہیں, مردہ زمین میں بارش پڑتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی, وہ ایسی زمین ہے جس کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا یہاں پہ کچھ اگے گا, یہاں پہ کوئی زندگی پیدا ہو سکتی ہے, لیکن وہاں پہ کیسے ہریالی ہو جاتی ہے. کَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت پکڑو. جیسے بارش ہوئی اور دیکھو کیسے مردہ زمین میں سے ہریالی نکل آئی, اسی طرح ایک بارش وہ بھی ہوگی جس وقت سب جسم مردہ ہو چکے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں نکالے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں سے نکال کے کھڑا کر دے گا. کیسے ہوگا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا, دو مرتبہ پھونکا جائے گا, تو پہلے سور میں تو تمام سارے فنا ہو جائیں گے نا, کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی, دوسرے سور میں پھر دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا, سب مردے زندہ ہو جائیں گے, تو اس میں اس حدیث میں آتا ہے کہ دوسری مرتبہ کے سور کے درمیان اور پہلی کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا, اور 40 سال میں مسلسل بارش ہوتی رہے گی. اس دوران میں ہر مردہ انسان اور جانور اس کے جسم میں اجزائے بدن اس کے ساتھ جمع کر کے ایک مکمل اس کا پورا ڈھانچہ بن جائے گا, پھر دوبارہ سور پھونکنا جائے گا تو اس سے ان کے اندر ان کی روح چلی جائے گی اور وہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. تو بارش برسی ہے وہاں پہ بھی, اور دیکھو سارے جسم کے جو پارٹیکلز ہیں یہ سارے جمع ہو کے اور ایک مکمل انسان بن کے, اس دن بھی ایسے ہی ہوگا. اسی طرح اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا. اور دیکھیں بار بار قرآن کریم میں ایک اور بھی بات ہے اس کی, بار بار قرآن کریم میں پانی سے تشبیہ دی گئی وحی کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے, وحی بھی پانی کی طرح ہے. یعنی جیسے مردہ زمین بارش سے زندہ ہو جاتی نا, اس طرح مردہ دل بھی وحی سے زندہ ہو جاتا ہے. اس مردہ دل کے اوپر بھی جب وحی کی بارش ہوتی ہے نا تو یہ زندہ, کیونکہ آگے اسی کی بات آ رہی ہے. اور وحی کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا, جو یہ بھی آسمان سے اترا ہے جیسے بارش آسمان سے اترتی ہے. तो इसको कैसे वेलकम करना चाहिए हमें? आपकी अम्मी अगर पाकिस्तान से आ रही हैं तो आप उनको कितना वार्मली वेलकम करती हैं? और अल्लाह का कलाम आसमान से उतरे तो हम उसे वेलकम ना करें? अगर नहीं करेंगे इसको वेलकम अपने दिल में, तो यह हमें कुछ नहीं देगा, उल्टा बोझ बन जाएगा। ये आगे आ रहा है ये बात। और अगर वेलकम करेंगे ना तो बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा, दुनिया और आखरत की भलाइयां देगा। वरना तो ये बोझ बन जाता है बिन बुलाए मेहमान की तरह। आगे इसी की बात है, वल बलदु तय्यिब, और जमीन जो पाकीजा होती है, जो जमीन जरखेज है, फर्टाइल है, क्या होता है? यखरुजु नबातुहु बिइज़्नी रब्बी, निकलती है इसमें से नबातात रब के इज़न से, अल्लाह के इज़न से इसमें से नबातात उगती हैं, हरियाली उगती है। वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा, और जो खबीस जमीन होती है, खराब जमीन होती है, उसमें से कोई चीज़ नहीं निकलती मगर बेफायदा चीज़ें। यानी ये जो वही की बारिश होती है दिलों पे, बारिश एक ही है, लेकिन जैसे जमीन के ऊपर बारिश तो सब जगह एक पड़ती है, लेकिन कोई जमीनें कैसी होती हैं कि उसके अंदर बड़ा सब्जा उग रहा है, कई जमीनें कैसी होती हैं कि उनके अंदर कुछ भी नहीं उगता, वो कलर वाली जमीन जिसको कहते हैं उसमें कुछ भी नहीं उगता, कई जमीनें कैसी होती हैं ऐसी चटियल सी होती हैं कि उसमें वीड्स ही उगते हैं और कोई फायदे की चीज नहीं उगती, बेफायदा चीज उगती है। फर्क किस में है, जमीन में या बारिश में? बारिश तो सेम है, जमीन में फर्क है। और यहां पे जमीन से तशबीह दी गई है इंसान के दिल को, ये दिल की भी तो एक जमीन है ना, इंसान भी तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते, देखिए हम मिट्टी से निकले हैं ना, जैसे मिट्टी डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती, जमीनें डिफरेंट तरह की होती, इसी तरह इंसान भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे मिट्टी वैसा इंसान। क्या तो अब ये बलद का मतलब यहां पे जमीन से क्या मुराद लेंगे हम? दिल। अब दिल के ऊपर जब वही की बारिश होती तो कई दिल ना पाकीजा दिल होते, वो उस पानी को जज़ब कर लेते हैं, इस वही को जज़ब कर लेते हैं। क्योंकि अच्छा मुझे बताएं कौन सी जमीन ज्यादा जज़ब करती है? जो खुश्क होती है, जो प्यासी होती है, उसके ऊपर आप पानी डालते हैं, खुशबू भी कितनी प्यारी उठती है और उसमें से हरियाली भी निकलती है, तो वो जज़ब करती है और वो उसके अंदर से नबातात निकलती हैं, यानी वो फिर ऐसे अमल करती है, ईमान भी आता है, अमल भी आता है, वो नेक अमाल करती है, दीन में आगे बढ़ते हैं, जिंदगी बदल जाती है उनकी, उनके अंदर से वो फूल उगते हैं हमदर्दी के, इसार के, आजी के, तवाजो के, नेकियां फूटती हैं उनके अंदर से, ये फ्लावर्स है ना, नेकियां फूटती हैं। ये जब कुरान दिल के ऊपर जाता है आपका, आप भी अपना देखिएगा कि जब मैं कुरान पढ़ रही हूँ ना मेरा दिल कैसा है, क्योंकि हम यहाँ से टाइप्स ऑफ हार्ट्स देख रहे हैं, तो अमल बदल जाता है, जिसको हम कहते हैं ना मेरी तो जिंदगी बदल गई है, वाकई जिंदगी बदल जाती है, नबातात उगती है ना नेकी की। अच्छा फिर कोई जमीन होती है जिसके बस ऊपर ऊपर पानी ठहरता है, अंदर नहीं अब्सॉर्ब होता मगर ऊपर ऊपर पानी ठहरता है, आपने देखा है ऐसी जमीन है, फिर वो पानी को, पानी वाटर रिजर्वॉयर्स होते हैं वहां पे, फिर जानवर या इंसान उससे फायदा उठाते हैं। तो वाकई कई जमीनें ऐसी भी होती हैं, तो कई दिल भी ऐसे होते हैं कि वो महफूज कर लेते हैं उस इल्म को, सिक्योर कर लेते हैं उस इल्म को, उससे वो दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। और कई जमीनें खबूस होती हैं, खराब होती हैं, वो ऐसी हैं जैसे कई कीचड़ वाली जमीन होती है ना, उसके ऊपर अब पानी पड़ भी जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, उसके अंदर पानी जाएगा ही नहीं, कीचड़ था पहले ही वहां पे। तो जिन दिलों के अंदर जो लापरवाह हैं, हर वक्त दूसरी दिलचस्पियों में लगे हुए, किसी और की अजमतें बढ़ाइयां उनके दिलों में, कुछ और ही उनके दिलों पे छाया रहता है। जैसे मैं किसी को जानती हूँ, वो सिर्फ कुरान की तरफ इसलिए नहीं आती कि वो हर वक्त इतनी मसरूफ है शॉपिंग में, उसको शॉपिंग का क्रेज है, वो इतनी मसरूफ होती है शॉपिंग में कि वो कहाँ से वक्त निकाले कि वो इस कुरान की तरफ आए। तो जिनकी दिलचस्पियां इतनी ज्यादा दूसरी चीजों में ना, वो जमीन भी एब्जॉर्ब नहीं करती, फिर वहां पे भी नहीं आप कुछ उम्मीद कर सकते कि यहाँ पे कुछ नहीं उगेगा। ऐसे लोग कुरान सुन भी लेना तो कोई फायदा नहीं है, अगर उनमें से निकलेगा तो झाड़ झंकार और कांटे ही निकलेंगे, क्योंकि ऐसे दिल या इनके अंदर वही की बारिश पड़े ना तो उसके अंदर हसद, तकबर, रयाकारी, अपनी बड़ाई, कीने, दूसरों से ऐसी राइवलरी, दुश्मनियां, ये पैदा होती हैं उसमें से, क्योंकि ये जमीन अच्छी नहीं थी। आप देख लें अल्लाह का कलाम एक ही है, क्या क्या चीजें उग रही हैं उससे। ये नकेद है ना, उगा तो सही कुछ मगर बेफायदा, इतनी मेहनत हुई और बेफायदा। और कलर वाली जमीन पर कुछ भी नहीं उगता, हो सकता है कुछ भी ना उगे, ऐसी भी जमीन होती ना जिसपे कुछ भी नहीं उगेगा, उसको आप सुनाओ ना सुनाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसके ऊपर कोई फायदा नहीं होता। आप देखें अब इसको ना अलग अलग वो उसमें करें, एक इस बात को समझे, तैयब जमीन तो आपको समझ आ गई ना, उसमें से तो नेकियां फूटेंगी, इंसान के रवैये, उसका अखलाक, उसकी जिंदगी बदलेगी, उसके मामलात बदल जाएंगे, तो ये उसके अंदर से निकला। एक जमीन वो भी है जो झाड़ झंकार उगाती है ना, इसका मतलब उसके ऊपर पड़ी तो है लेकिन उसके अंदर से निकला कि अगर वो दीन की तरफ आ गया तो ये चीजें निकलेंगी, उसको मैं नीचे गिरा के मैं आगे बढ़ जाऊं, हाँ शोहरत मुझे मिले, मेरा नाम हो, ये हो वो, ये चीजें उसके अंदर से निकलेंगी, ठीक है। और अगर वो दीन की तरफ नहीं आता, बारिश पड़ी है कुछ भी नहीं निकला, तो वो ऐसे ही है कि बस चटियल मैदान जैसे पत्थर के ऊपर बारिश पड़ती रहे, कुछ भी नहीं निकलता। आप कितने लोगों को कितना कुछ सुनाते रहे, कुरान सुना रहे हैं उनको, कितना बता रहे हैं उनको, दर सुना रहे, तास से मस नहीं होते। कुरान वो ही है, एक बंदे के आंसू निकल रहे हैं, वो रो रहा है और दूसरा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो दिलों का फर्क है ना, तो काम करने की किधर जरूरत है, फिर फिक्र करने की किस पे जरूरत है, इस सरजमीन पे, ये हमारी जमीन अच्छी नहीं है, फिर इसमें हल चलाएं, इसको नरम करें, फिर इसको फर्टाइल करें ताकि इसमें से कोई अच्छाई भलाई निकले। ये फिर हमें मेहनत किधर करनी है, अगर पथरीली हमारी जमीन है दिल की, हम अपने अपने दिल का खुद जायजा लें, मेरी दिल की जमीन कैसी है। अगर आपको एहसास हो रहा है ना कि इसके अंदर से झाड़ झनकार निकल रही है, झाड़ झनकार तो उल्टा बेफायदा चीज है, वो तो उल्टा मुसीबत है, उसको तो निकालने की जरूरत है। अपना देखें कि मैं कुरान सुन के ना मेरा क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या तब्दीली आ रही है, क्या इस तरह की चीजें आ रही हैं, या नेकियां फूट रही हैं, या कुछ मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब आप चेक कर लेंगे ना, डायग्नोज करें पहले, जब आप डायग्नोज कर लेंगे फिर उस मुताबिक उसके ऊपर इलाज करें। अगर पथरीली जमीन है, आप जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अल्लाह के जिक्र के अलावा ज्यादा बातें ना किया करो वरना दिल सख्त हो जाएंगे, दिल सख्त हो जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बहुत ज्यादा ना हंसा करो वरना दिल मुर्दा हो जाएंगे। हमारा हाल क्या, कोई बात हमने मुख्तसर करनी ही नहीं है, कोई पूछ ले सही कोई बात, बोल बोल के कभी कभी बाज लोग तो सारा दिन एक कान पे फोन है और दूसरे हाथों से काम कर रहे हैं लेकिन कान पे फोन जरूर लगा, इतनी बातें, ये बातों का हिसाब देना वो तो अलग बात है, दिल सख्त हो जाएगा। और दिल सख्त हो गया ना, कोई बात असर नहीं करेगी कुरान की, इसकी खातिर कम बोलें। अब जमीन के ऊपर की लेयर आप देखें हार्ड हो जाए तो उसके अंदर तो बीज उग ही नहीं सकता, अब बीज अच्छे से अच्छा भी डाल लेंगे, उसके ऊपर पानी भी डालते रहे, बारिश होती भी रहे, क्या होगा इसका फायदा। तो तब एफर्ट किस में करनी है, उसको नरम करने में। नरम कैसे होगा दिल, इस कुरान से और मौत की याद से, हल चलाएं इस पे। तो अब हम अपने दिलों को इस तरह से प्रिपेयर करें कुरान के लिए, इसीलिए एक ही क्लास होती है, एक ही क्लास है, एक ही चीज पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट्स पे असर और उनकी जिंदगियां डिफरेंट है सबकी, उनके अमल सबके डिफरेंट है। क्यों, आप कभी कहते हैं कि फलां भी तो कुरान पढ़ती है, उसने तो कुरान की इतनी क्लासें ली, अमल तो उसका कुछ नहीं। भाई वो कुरान का तो कसूर नहीं है, कुरान 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 को क्यों इल्जाम देते हो, कुरान का नहीं कसूर। अगर कोई गलत करता है तो उसकी अपनी जमीन का कसूर है, قرآن تو ابو جہل نے بھی سنا تھا، تو کیا ہوا؟ کوئی فرق ہی نہیں پڑا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور نفرت اور زیادہ دشمنی بڑھ گئی، یہی جھاڑ جھنکاری نکلی۔ اس لیے بعض لوگوں کے اوپر وحی کی بارش برستی وہ اور ہی بگڑ جاتے ہیں، اسی قرآن سے کئی لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، قرآن ہی بتاتا ہے ہمیں، دل بھی کثیرا و یادی بھی کثیرا، بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو دل کی زمین صحیح کرنے کی ضرورت ہے، دل کی زمین، آپ کیا فیل کر رہے ہیں وہ آپ کو خود ہی پتا ہے، ٹھیک ہے؟ بے فائدہ اگر چیزیں اگ رہی ہیں تو آپ خود ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں کے اوپر بارش یہ برستی ہے اور ان کے اندر اتنا تکبر پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے پاس تو پہلے ہی اتنا علم ہے، وہ پانی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی زمین قبول ہی نہ کرے پانی کو، اوپر اوپر ہی پھینک دے تو پھر بھی کیا ہوگا، اس میں سے پھول بوٹے تو نہیں اگیں گے نا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنی رحمت برسا دی، مگر دیکھو دل ہی محروم رہ گئے اس سے۔ بعض دل ایسے ہیں، بد نصیب ہیں، جو اس رحمت کی بارش کے آگے بھی محروم رہ گئے۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں اپنی آیتیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرنے والی، شکر کرنے والوں کے لیے ہم بار بار پھیر پھیر کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ اور شکر کے لیے، شکر گزار کے لیے کیوں، باقی نہیں کیا اس سے فائدہ اٹھاتے؟ شکر گزار جب دیکھتا ہے نا اللہ کی ان آیات کو، اس کا دل اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے۔ اللہ تیری اتنی بڑی یہ رحمت میرے لیے، اللہ تو نے اتنی بڑی یہ چیز میرے لیے اتاری، اس کا دل شکر گزاری میں اور زیادہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوتا ہے، اس کو یہ آیتیں اور زیادہ اپیل کرتی ہیں۔ اور اگر آیات سے مراد نشانیاں لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ اپنی نشانیاں پھیر پھیر کے دکھاتا ہے، لیکن شکر گزار بندے ہی اللہ کی نشانیوں سے فائدہ لیتے ہیں، یعنی ان کا ہی ایمان بڑھتا ہے۔ مثلا شکر گزار کون ہے؟ وہ پھل کو دیکھے گا تو اللہ کو یاد کرے گا، یا اللہ تعالیٰ تو نے اس مٹی سے میرے لیے یہ نکالا، مجھے تو میرے قوت بھی نہیں تھی، کوئی میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں اس طرح نکال سکوں، اللہ تو نے میرے لیے یہ نکال لیا، لذت کا سامان بھی کیا، میری بھوک کو بھی ختم کیا، میرے لیے انرجی کا بھی سامان کیا۔ وہ اللہ کو کے احسان کو مانے گا۔ دیکھیں انسان ہمیں پھول پیش کریں تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اور کتنا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں اس کے لیے کتنی جگہ بن جاتی ہے، اس نے مجھے اتنا پیارا بوکے دیا، اور اللہ تعالیٰ اتنے پھول کھلاتا ہے، یہ بھی تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ہم ان کو روز دیکھتے ہیں، اور اس رب کے لیے دل میں جگہ نہیں بنتی اور شکر کے جذبات نہیں پیدا ہوتے۔ اسی طرح ماحول میں اتنی خوبصورتی اس نے پھیلا دی، ہر طرف گرینری ہے، ہماری لذت کا سامان کر دیا اور ہمارے فائدے کی چیز ہے، یہ ایک ایک چیز کو میرے لیے اگایا، یہ سارا ارینجمنٹ میرے لیے کیا، چھ دنوں میں اتنا اہتمام کیا، تو میرے اندر کوئی شکر گزاری نہیں آنی چاہیے۔ ظاہر ہے جو شکر کرنے والا ہوگا نا، شکر چیز ہی کیا ہوتی ہے، اللہ کے حق کو پہچان لینا، اس کے احسانات کو دیکھنا شروع کر دینا، آپ کو محسوس ہونے لگے نا جب اللہ کی نعمتیں، سمجھ لیں آپ کے اندر شکر گزاری آ رہی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی میرے لیے نعمت، میں کہاں پا سکتی تھی، میری کہاں اتنی اوقات جتنا میرے رب نے مجھے دے دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عمل دیکھ کے ہمیں دینے لگتا نا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، یہ اللہ کی سراسر رحمت ہے کہ اس نے دیا۔ شکر گزاری پیدا ہوتی ہے نا کہ میں تو نکمی، میرے اعمال نکمے، پھر بھی مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے آیتیں بھی اور نشانیاں بھی واقعی ان لوگوں کے لیے ہیں جو شکر گزاری کریں، وہ ان سے واقعی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اس وحی کو بھی واقعی اس طرح سے لیتے ہیں شکر گزاری کے ساتھ، تو اپنے دل کھول دیتے ہیں، دل بچھا دیتے ہیں میرے رب نے کتنا ہدایت کا سامان میرے لیے لکھا دیا۔ اور اسی آیت کے اوپر حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یعنی یہ قرآن، یہ دین، اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر برسی، پس اس زمین کا ایک حصہ عمدہ تھا، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور گھاس اور دیگر بہت سی جیسی فائدہ مند جڑی بوٹیاں اگائیں، اور اس کا ایک حصہ سخت تھا، اس نے پانی کو روک لیا تو اس کے ذریعے سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، کھیتوں کو بھی سراب کیا، اور وہ بارش زمین کے دوسرے حصے کو بھی پہنچی جو چٹیل تھا، جس نے پانی نہ روکا نہ کوئی گھاس اگائی۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو جن کی زمین اتنی عمدہ ہے، وہ اپنے اندر پانی جذب کرتے ہیں، ان سے پھول بوٹے اگتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے وہ ذرا سخت ہے، وہ خود اتنا نہیں فائدہ اٹھاتا، لیکن وہ پانی کو، میں نے آپ کو بتایا نا، محفوظ کر لیتا ہے۔ اب اس سے کم از کم لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، خود اس کو شاید اتنا نہیں فائدہ ہو، اس جو خود فائدہ سے مطلب یہ ہے کہ خود اس کا عمل اتنا شاید نہ ہی بدلے، لیکن لوگ اس سے علم لے کے ان کو فائدہ مل جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ مل رہا ہے۔ تیسری زمین ہے وہ کسی قابل ہی نہیں ہے، نہ وہ دوسروں کو کوئی فائدہ دیتی، نہ خود اپنے اندر کچھ اس کا اگتا ہے۔ اب یہاں سے آگے جو سورت ہے، اس میں انباء الرسل ہیں، یعنی رسولوں کی خبریں۔ ایک ہوتا ہے قصص الانبیاء، قصص الانبیاء میں کیا ہوتا ہے، رسول کی، نبی کی اپنی زندگی کے بارے میں ساری بات ہوتی ہے۔ ایک ہے انباء الرسل کے، کس طرح رسول نے انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں نے کیا جواب دیا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے قصص الانبیاء میں جیسے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، انہوں نے، ان کا کوئی یہ نہیں آتا یوسف علیہ السلام کا کہ انہوں نے لوگوں کو خبر دی، پھر ان کو کہا ایک اللہ کی طرف آؤ، پھر یہ لوگوں نے انکار کیا، یہ والی چیزیں نہیں آتی، رائٹ۔ تو وہ قصص الانبیاء ہیں، اور یہ ہیں انباء الرسل، رسولوں کی خبریں۔ اب سورہ اعراف کے شروع سے ابھی تک ہم کیا دیکھتے ہیں، شیطان اور آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پوری قصہ دیکھا، پھر ہم نے توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں باتیں پڑھی، پھر اب یہاں سے انبیاء اور ان کی امتوں کا سلسلہ ذکر شروع ہو رہا ہے، انباء اور رسل شروع ہو رہے ہیں، اور یہ تقریباً پانچ چھ نبی جو ہیں، ان کا آپ ذکر بار بار قرآن کریم میں دیکھیں گے، ڈفرنٹ جگہوں پہ دیکھیں گے، آگے بھی ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، کسی جگہ مختصر ذکر ہے، کسی جگہ زیادہ ایکسپلین کیا گیا ہے، آد، سمود کا، قوم نوح کا، قوم شعیب کا، قوم لوط کا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بہت سارے پاروں میں آپ دیکھیں گے۔ اب یہاں سے لے کر تقریباً آخر سورت تک انہی انبیاء کے قصوں کو ہم پڑھیں گے، اور اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں عبرت کی ملتی ہیں۔ نبیوں کا پیغام بھی وہی ہے، اور ان کو مور اور لیس جو ان کو جواب ملے وہ بھی سیم ہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی سائیکی چینج نہیں ہوتی، حالانکہ یہ کوئی نبی ساتھ ساتھ نہیں آئے کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ایسے آ رہا، ان کے درمیان ہزاروں سالوں کا بھی فاصلہ تھا، مگر جواب ایک جیسے کیوں ہیں؟ کیا لوگ پچھلوں سے کچھ نہیں سیکھتے؟ ایسا ہی لگتا ہے کہ لوگوں نے پچھلوں سے کچھ نہیں سیکھا، کچھ نیا نہیں ہوا، سیم وہی باتیں جو ہزاروں سال پہلے انسان کرتے تھے وہی بعد والے کرتے رہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے نا، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، ہم تاریخ کو اسی لیے پڑھتے ہیں کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہمیں بھی اس سے سبق دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان قصوں سے تسلی دی گئی کہ دیکھیں آپ سے پہلے رسولوں نے کتنی کوششیں کی اپنی امتوں کے ساتھ اور ان کو کیا جواب ملے، تو آپ تسلی رکھیں، اگر آپ کے ساتھ یہ اہل مکہ ایسا کر رہے ہیں تو دیکھیں آپ سے پہلے رسولوں نے بھی کیسے صبر کیا، اور مشرکین مکہ کو بھی بتا دیا کہ اگر دیکھا جو جن لوگوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ ایسا کیا ان قوموں کا کیا حال ہوا، تو تم باز آ جاؤ اس رسول کی مخالفت سے۔ تو یہ دو تین حکمت کی باتیں ہیں جو ان قصوں کو بیان کرنے میں ہیں۔ اب پہلا قصہ جو ہم یہاں پہ دیکھیں گے وہ ہے نوح علیہ السلام کا قصہ۔ سلسلہ انبیاء میں جو پہلے رسول تھے، رسول وہ نوح علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، ویسے تو نبی آدم علیہ السلام بھی تھے، مگر آدم علیہ السلام کے وقت میں کوئی کفر شرک اس طرح کا ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، نہ کوئی ایسے کو بہت کوئی شریعت کے بہت زیادہ کوئی احکامات ایسے نہیں تھے، کیونکہ انسان ہی بہت کم تھے نا، انسانوں کی کوئی ایسی بہت زیادہ بڑی آبادی نہیں تھی، کافر کہیں پہ بھی نہیں تھے. کفر کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے نا، نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے. نہیں، اس سے پہلے سمجھ لیں سارے مسلمان تھے. اب کیا ہوا، کیوں انہوں نے شرک شروع کر دیا، یہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے. مگر یہ بتا دوں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کہا جاتا ہے 10 قرن کا فاصلہ ہے. قرن جو ہے نا 100 ایئر کو کہتے ہیں، یعنی سینچری، 10 سینچریز کا فاصلہ، یعنی 1000 سال کا. بعض جگہ آیا ہے کہ 2000 سال کا فاصلہ ہے. اینی ہاؤ، یعنی کافی زیادہ ڈفرینس ہے. اور نوح علیہ السلام کا اصلی نام نوح نہیں تھا، ان کا اصلی نام تھا شاکر، مگر وہ بہت زیادہ اللہ کے سامنے رونے والے تھے، اس لیے ان کا نام نوح ہے. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کی ٹوٹل عمر کہا جاتا ہے 1050 ایئرس ہوئی تھی، کیونکہ 950 ایئرس وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے تھے. آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام آئے، وہ بھی نبی تھے، اور ان کے بعد اکثر صحابہ کا یہی قول ہے کہ نوح علیہ السلام آئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، اور طوفان کے بعد بھی 60 سال زندہ رہے تھے. تو یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں. اب کیا ہوا تھا، کیوں ان کی قوم نے شرک شروع کیا، کیسے ان کے اندر شرک سٹارٹ ہوا، اس کی شروعات کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے. کیونکہ بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے نا اس بات کے اوپر کہ جب ایک مسلمان قوم، سارے مسلمان تھے، شرک کیسے اس کے اندر آ گیا، کس نے ان کو شرک سکھا دیا، کس نے ان کو بتایا کہ شرک کرو. تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو نیک نیک لوگ تھے ان کے، وہ جب فوت ہو گئے تو انہوں نے، ان کو بہت یہ ہوا کہ یہ تو نیک ہمارے لوگ تھے، یہ اب چلے گئے، یہ تو ہمیں نیکی کا بتاتے تھے، تو اب کیا ہے. اب ان کو شیطان نے سجھا دیا یہ کہ اب ایسا کرو کہ یہ اولیاء اللہ جن کو ہم کہتے ہیں، اب ان کی تصویریں بنا لو، تاکہ جب آپ تصویریں دیکھو گے تو آپ کو اللہ یاد آ جائے. اور آج کے وقت میں بھی مجھے ایک مسلمان عورت نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب کی تصویر ہے، ان کے گھر میں انٹر ہوتے بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی. تو ہم تصویر ہم نے اس لیے لگائی ہے کیونکہ ہم جب انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا ہے نا، ہم جب ان کو دیکھتے ہیں ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے قرآن پاک میں بھی پیر صاحب کی تصویر رکھی تھی، کیوں جی انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا. اور بھائی تم یہ تو دیکھو، نوح علیہ السلام کے وقت میں کوئی بت پرستی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا ان سے پہلے. اب بت پرستی شروع کیسے ہوئی، انہوں نے بھی تو تصویریں پہلے سٹارٹ کی تھیں. اسی لیے تصویر کو کسی ایسی جگہ پہ لگانا، ریسپیکٹیبل جگہ پہ، دیواروں پہ یا اس پہ لگانے کو منع کیا گیا، کیونکہ ہر شرک کا راستہ بھی اسلام بند کرتا ہے، جس سے کبھی بھی شرک آ سکتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم تو نہیں ایسے کرتے، کوئی اس طرح سوچ کے نہیں کرتا. انہوں نے کوئی سوچ کے تھوڑی کیا تھا ہم شرک کرنے لگے ہم ان کو پوجیں گے، نہیں نہیں، بہت آرام سے انہوں نے اس کو کوئی بگ ڈیل نہیں سمجھا، انہوں نے تصویریں لگائیں، انہوں نے کہا بھائی ان سے ہمیں اللہ یاد آتا ہے. اور بڑی بڑی لاجیکل بات لگتی ہے، ہاں جی ان کو دیکھیں گے کوئی بھی چیز سے اللہ یاد آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. بھائی اچھا جی، وہ تو کوئی بالکل بے ضرر سا عمل لگ رہا تھا نا، کہ اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں. اچھا جی پھر کیا ہوا، اب ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے کہا تصویریں بھائی تو مٹ وٹ جاتی ہیں، چلو پتھروں کے ساتھ ہم کوئی بلا لیتے ہیں تاکہ بالکل ویسے رہیں، کیونکہ ابھی تو ہمارے میموری میں ہیں ان کا کیسے وہ لگتے تھے، پھر بعد میں ہم مر وغیرہ گئے تو کون کس کو یاد رہے گا، تصویریں بھی نہ مٹ جائیں، پتھروں سے بنا لیا. جب پتھر بنا لیے تو اب ان کی جو آگے کی جنریشنز تھی نا، آہستہ 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 ان کے اندر پھر بت پرستی آ گئی، یعنی انہوں نے پھر انہی پتھروں کو ہی پوجنا شروع کر دیا. یہ اولیاء اللہ تھے نا، انہیں کو پوجنا شروع کر دیا. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، اور کہاں ان کو ہی پوجنا، انہیں کو سمجھ لیا کہ یہ ہمارے کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے کام منا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ایسا نہیں تھا کہ ان کو اللہ کا پتہ نہیں تھا، یا کبھی آج تک کسی نے ان کو بتایا نہیں تھا، یا ان کو شعور ہی نہیں تھا، یا ان کے آباؤ اجداد میں کبھی کسی نے اللہ کی پوجا نہیں کی تھی، ایسا نہیں تھا، مسلمان ہی تھے. ان دیکھو کیسے گمراہی آتی ہے، کیسے شرک کریپ ان کر جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف ہی بھیجا گیا ہے، کیونکہ وہ بیٹر طور پہ اپنی قوم کی سائیکی پھر سمجھتے ہیں، اور اس کو ان کی باتوں کو صحیح طرح سے कोई उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो क्या हुआ, फ़काला, तो उसने कहा या कौमी, ए मेरी कौम, अबुदुल्ला, इबादत करो अल्लाह की, मालकुम मिन इलाहिन गैरे, नहीं तुम्हारे लिए कोई इलाह उसके सिवा। अब ये भी याद रखें कि रसूल कौन होता है, क्या काम करते हैं वो। रसूल अल्लाह ताला की तरफ से सेलेक्टेड अफराद होते हैं जो अपने दौर के बेस्ट पीपल होते हैं, बेस्ट, उनके दौर में उनसे बेहतर कोई और नहीं होता। ये नहीं बेहतरी का मतलब कि उनके पास माल बहुत होता है या बहुत बड़े बड़े महल होते हैं या कोई हुकूमत होती है, बल्कि किरदार, अखलाक, ईमान के अंदर बेस्ट होते हैं। उन्होंने शिर्क नहीं कभी किया होता, हया वाले होते हैं, अमानतदार होते हैं, अपनी बड़ी अच्छी उनकी रेपुटेशन होती है अपने लोगों में, लोग कायल होते हैं, बात समझते हैं, मानते हैं सब लोग कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं। तो फिर वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। अब उनके पास कोई ज़ाहरी चकाचौंध की चीज़ें तो होती नहीं है कि कोई महल्लात हों या हुकूमतें हों के लोग उनके पास भागे चले आएँ, लोग तो इन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं ना। वो अल्लाह का पैगाम देते हैं लोगों को, तो लोग फिर ज़्यादातर फिर उनकी मुखालफत करने में कोई हर्ज नहीं समझते, क्योंकि वो कोई इतने बड़े कोई बादशाह या कोई इस तरह हो तो लोग उनसे ज़रा मुखालफत करने में घबराएं, वो लोग उनकी फिर बस बहुत ज़्यादा खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते हैं। और रसूल सेलेक्ट कैसे होते हैं, रसालत कोई इलेक्शन नहीं है जिसमें कोई वोट दे के किसी को सेलेक्ट करे, ना ही रसूल कोई मारा मारा फिरता है लोगों को अपनी तरफ करने के लिए कि मेरे साथ हो जाओ, मेरे साथ जितने लोग होंगे उतने होगी, ना कोई एप्लीकेशन देता, बल्कि रसूल रसूल बनने से पहले एक मिनट पहले भी नहीं जानता कि मैं रसूल हूँ, एक मिनट पहले भी नहीं जानता, उसको नहीं पता होता कि मैं अल्लाह का रसूल बनने वाला, ना वो कोई दुआएं करता अल्लाह मुझे अपना रसूल बना लेना। ये सरासर कंप्लीटली अल्लाह ताला का इंतखाब होता है, वो चूज करता है। फिर रसूल का मिशन क्या हो जाता है, इंसानियत को अल्लाह के साथ जोड़ना, वो अपने साथ नहीं जोड़ता, अल्लाह के साथ, अबुदुल्ला, अल्लाह की इबादत करो, ठीक है। और जब उसको ठुकराया जाता है अल्लाह की तरफ से वही आती है उसकी ढारस के लिए, बाज दफ़ा रसूलों के साथ कोई भी नहीं होता, तो रब उनको तसल्ली देता है और उनके लिए सबसे बड़ी उनकी जो तसल्ली होती है, जो उनके दिल की ढारस होती है, वही ये बात होती है कि मेरा रब ने वो नहीं मुझे छोड़ता। उनको किसी की मुखालफत से नहीं होता, उनको होता है कि मेरा रब ना मुझे छोड़े, उनके लिए यही फिर चीज़ सबसे बड़ा एतमाद होता है। और याद रखें हर रसूल के उस किस्से में आप ये पढ़ेंगे कि वो ये कहते हैं अबुदुल्ला, अल्लाह की इबादत करो। रसूल की दावत ऐसी नहीं है कि वो बस टेम्प्रेरी हो, थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद कोई और आए तो कुछ और शुरू कर दे, नहीं। हर दौर में सोचें, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर रसूल एक ही दावत देता रहा है, एक एक पैगाम है, जस्ट वन, और वो है अल्लाह की इबादत करो। इस्लाम कोई नई बात नहीं लेकर आया, कोई नया अकीदा नहीं लेकर आया, वही अकीदा एक ही है, बेस सेम है, अल्लाह की इबादत करो, मालकुम मिन इलाहिन गैरु, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है तुम्हारा। इलाह कौन होता है, जो लायक इबादत हो, जिसकी इबादत की जाए। इन्नी अखाफ अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, मैं बेशक मैं डरता हूं तुम पर अजाब से बड़े दिन के। ये बड़ा दिन कौन सा है, क़यामत का दिन, मैं क़यामत के दिन के अजाब से डरता हूं, क्योंकि जो रसूल जानता है कि जो रसूल होता है उसको पता होता है कि अगर इन्होंने शिर्क किया, तौहीद पे नहीं आए, तो क्या अंजाम होगा क़यामत के दिन। ऐसी नसीहत वही कर सकता है ना जो किसी का खैर ख्वाह हो, जैसे बाप बच्चों को कहता है कि मुझे डर लगता है अगर तुम फेल हो गए तो क्या होगा तुम्हारा, ऐसे कहता है। तो नूह अलैहिस्सलाम भी इस तरह से खैर ख्वाह के तौर पर एक मुशफिक बाप की तरह समझा रहे हैं। قال الملأ, कहा उस सरदारों ने, मिन قومه, उसकी कौम में से, उसके कौम के सरदारों ने कहा, इन्ना لنراك في ضلال مبين, हम तो तुझे देखते हैं खुली गुमराही में, हम तो तुझे गुमराही में देखते हैं। ये ऐसे ऐसा माफिया ना हर दौर में होता है, हमेशा कुछ लोगों को हिदायत गुमराही लगती है और गुमराही हिदायत लगती है। जैसे अबू सुफियान, अबू जहल वगैरह थे, उनको लगता था कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुमराही की तरफ बुला रहे हैं, और बड़े बड़े सरदार क्यों कहते थे, आम कॉमन लोग क्यों नहीं कहते थे? कॉमन लोगों की एक तो इतनी उनके अंदर सकत नहीं होती कि वो बोले खड़े हों, सरदार जो होते हैं जब उनके अंदर इतना तकबर, सरदार कौन होते हैं असल में? अब आप सोचेंगे शायद कोई जागीरदारों की बात हो रही है, जागीरदारों की नहीं हो रही, जो भी किसी सोसाइटी में ट्रेंड सेटर्स है ना, बिग नेम्स जैसे कोई सियासतदान हो सकते हैं, जैसे कोई कोई सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, जैसे कोई बड़े बड़े लोग जिनको सब जानते हैं, फॉर एग्जांपल इधर कोई बिल गेट्स हो गया, कोई ऐसे हो गए जिनको सब लोग जानते हैं कि ये कोई बड़ी चीज़ है, उसको समझा जाता है ना बड़ा। तो इसी तरह उस सोसाइटी के भी जिसको लोग फॉलो करते हैं। अब ये कौम के जो बड़े होते थे ना, ये ज़्यादा बिगड़े होते हैं हमेशा, और उनका बिगड़ना फिर उनके लिए नहीं सिर्फ रहता, लोग भी उनको ही फॉलो करते हैं तो लोग भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। इन ये थ्रेटन हो जाते हैं रसूलों से। एक तो इनको ये होता है कि हम इतने बड़े हैं, हमें छोड़ के ये इनको कैसे मिल गई कोई अल्लाह का पैगाम या कुछ है, हमें मिलना चाहिए, ये क्या चीज़ है, आम से लोग हैं। दूसरी उनको क्या बात होती है कि उनके जो मफाद होते हैं उसके ऊपर ज्यादा आती है। जब रसूल कहता है बेईमानी ना करो, चोर बाजारी ना करो, मसलन एक ऐसे बात कह रहे हैं, किसी चीज़ों से मना करता है, तो ये बड़े बड़े लोग तो उन्हीं में इन्वॉल्व होते हैं। अब उनको ये बुरा लगने शुरू हो जाता है। और मसला क्या होता है कि जब बड़े सरदार कोई बात करते हैं ना, किसी की बात को डिसमिस करते हैं, मतलब नहीं ये ऐसे ही कह रहा है, मिसाल के तौर पे आज कोई कह देता है जी ये जो फलां आलिम है ना, ये यहूद का एजेंट है, तो क्या हो जाएगा? अब उस बेचारे की सारी बात जो वो बता रहा है ना, वो तो सारी बात ही लोगों के सामने बिल्कुल ऐसे हो जाएगी कि पानी में बह जाएगी, ये तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये तो है ही यहूदियों का एजेंट। लो जी, अब एक वो उसके ऊपर एक स्टैंप लग गई, तो अब वो कोई भी उसकी बात को नहीं सुनेगा। नहीं जी ये तो उनके वेस्ट के एजेंडे पे काम करता है, ये तो ये करता है। तो अब देखें, एक स्टेटमेंट किसी ने दे दी ना, तो उसके बाद उसका काम तो और मुश्किल हो गया, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं सुनेगा। इसी तरह ये बड़े बड़े लोगों ने कह दिया ना, तो ये तो है ही गुमराह, ये तो बिल्कुल लॉस्ट है, क्रेजी हो गए। तो अब बताएं ऐसे में कोई क्या सुनेगा? काला या कौमी लई सबी, उसने कहा है मेरी कौम नहीं मेरे साथ कोई गुमराही। अब ना तो उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा किया, ना उन्होंने कोई जहालत का रवैया अपनाया, बस ऐ मेरी कौम मेरे साथ कोई किसी किस्म की भी गुमराही नहीं। वला किन्नी रसूल उम्मे रब्बिल आलमीन, मैं तो रब्बिल आलमीन का एक नुमाइंदा हूँ, मैं तो उसकी तरफ से एक अपॉइंटेड आदमी हूँ, मैं तो तुम्हें उसकी बात बता रहा हूँ। बल्ले हुकुम रिसालात रब्बी, मैं तुमको अपने रब के मैसेज दे रहा हूँ, मेरा कोई खुद का तो ये मैसेज नहीं है। अब इंशाल्लाह ताला जो सूरह नूह आएगी ना, आगे पूरी सूरत है नूह अलैहिस्सलाम के नाम पे, तो उसके अंदर हम और बहुत ज़्यादा डिटेल में नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम देखेंगे। यहाँ पे तो ब्रीफली बताया गया। तो वह अनसाहुलकुम, मैं खैर ख्वाही करता हूँ तुम्हारी। ये कितनी बड़ी खैर ख्वाही है देखें। एक खैर ख्वाही वो होती है कि आप मसलन किसी को जॉब दिला देते हैं, किसी का कोई काम बना देते हैं, किसी की शादी आपने करा दी, किसी को घर ले लिया, बड़ी आपने काम, जी मैंने इसकी बड़ी खैर ख्वाही की है। सबसे बड़ी किसी की खैर ख्वाही क्या है? सबसे बड़ी कि उसको आग के अजाब से बचा लेना, उसके लिए तदबीर करना, उसकी कोशिश करना कि कोई आग से बच जाए, ये इससे बड़ी किसी के साथ खैर ख्वाही हो ही नहीं सकती। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए ज़्यादातर सोचते हैं, मैं बड़ी खैर ख्वाही हूँ, जाहिर है हर पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी खैर ख्वाही उनको क्या नज़र आती है? बस कपड़े ले दिए, जूते ले दिए, ब्रांड नेम पहना दिया, फलाना कर दिया, अच्छी सी अच्छी लग्जरीज के अंदर उनको रखा, तो ये खैर ख्वाही है? वो सबसे बड़ी इनकी खैर ख्वाही है कि इनको आग से बचाने की कोशिश करो, आग से बचाने की, ये है उनकी खैर ख्वाही। उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो ही नहीं होती लोगों की, ना नमाज का कहेंगे, ना उनके कोई दीन की परवाह करेंगे, ना कुछ है, बच्चे जिस तरफ मर्जी जा रहे हैं। तो ये नहीं है खैर ख्वाही। खैर ख्वाही ये है, अब जो पैगंबर है वो भी अपनी कौम के लिए क्या है, एक बाप की तरह होता है, और वो खैर ख्वाह है, इसीलिए वो डर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए डरता हूं उस बड़े दिन के अजाब से। और देखें, याद रखें, जो जितना ज़्यादा इल्म रखता है ना, उसमें उतना ही ज़्यादा डर होता है। अब कौम क्यों नहीं डर रही? डरना तो उनको चाहिए, मगर उनके पास इल्म नहीं है, इसलिए नहीं डरते। इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा इल्म था। जितना आपका इल्म बढ़ता जाएगा उतना आपके अंदर खौफे खुदा पैदा होगा, और इसीलिए आप बाहर किसी को बताएं वो कहते हैं हमने क्या करना है, कुरान की तरफ आके सब कुछ पता है हमें, भला नमाज रोजा नहीं करना आता, क्या सिखाएंगे हमें। उनके अंदर खौफे खुदा नहीं है, इसलिए कि इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है कुरान कहता क्या। तो वो कहते हैं कि मैं खैर ख्वाह हूं तुम्हारे लिए, वह आलमू मिन अल्लाह ही माला तालमून, और मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ने मुझे उन बातों की वही की है, अब आखरत का के हिसाब किताब का, वहां पे जन्नत जहन्नुम का जो इल्म इनके पास था लोगों के पास नहीं था, लोगों को नहीं इतना शऊर के जो वहां पे क्या हाल होगा। अब वो सोचते थे कि हमारी खैर ख्वाही है कि हमारी बातें मानी जाए, ये तो हमसे झगड़ा कर रहे हैं तो ये तो खैर ख्वाही नहीं है। अब आजिब तुम अनजाकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, क्या भला ताजुब हो रहा है तुमको इस बात पे, ये कौन कह रहा है, नूह अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, वो कहते कह रहे हैं आप उन्हीं की बात कंटिन्यू है कि क्या तुम्हें इस बात पे ताजुब हो रहा है कि तुम्हारे पास आई एक नसीहत मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अला रजुलिन मिनकुम एक शख्स पर तुम्ही में से, क्या तुम्हें इस बात पे हैरत है कि एक इंसान के ऊपर क्यों जिक्र आ गया, एक इंसान पे क्यों वही आ गई कि तुम्हें यह बात अजीब लग रही है। ये कल भी और आज भी लोगों का यही मसला है कि आता तो कोई फरिश्ता आता, इंसान के ऊपर कैसे वही आ गई, ये तो हमारे जैसा इंसान है, क्योंकि नबी मैंने बताया ना अपनी कौम में से होता था, उन्हीं लोगों के सामने वो पैदा हुआ, पला बड़ा, जवान हुआ, वो कहते थे ये तो हमारे अंदर से ही एक आदमी है, इसकी हम क्यों बात सुने। आनी थी नसीहत तो कोई और आता, कोई आसमान से उतरता, फरिश्ता उतरता, कुछ उतरता, तो हम समझते भी, इसको हम क्या समझते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपकी कम्युनिटी के अंदर कोई नेक इंसान हो तो उसकी बात आप इसलिए नहीं सुनते जी वो घर की मुर्गी दाल बराबर, कि अब ये क्या, ये तो हमारे अंदर से तो इनको तो हम जानते ही, कोई बाहर से आता तो आप उसकी बात बहुत उससे सुनते हैं, या माँ बाप की बात नहीं लोग सुनते ज़्यादातर, बाहर वाले की बात सुनते, तो वो उनकी कौम में से थे। उन्होंने कहा कि ये एक इंसान के पर, दूसरा उनको मसला क्या था, चंबे की बात, इतनी अजीब बात उनको लगती है, इंसान वाकई हमें बताएगा अल्लाह की बातें। और आज भी लोग इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करने की कोशिश करते हैं कि बस वो नूर थे, इंसान नहीं थे, बस क्योंकि उनके हजम ही नहीं है बात होती कि वो इंसान है। हालांकि कुरान कहता है कि आप कह दें कि मैं बशर हूं, इन्नमा बशरुम मिस्लुकुम, तो लियोन ज़िरकुम, ताकि वो खबरदार कर दे तुमको। तुम्हें ये बात की हैरत होती है कि एक इंसान तुम्हारे पास एक नसीहत लेकर आया तुम्हारे रब की तरफ से ताकि वो तुम्हें खबरदार कर दे, वाली तत्ता कुर, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यानी अल्लाह के पैगाम का मकसद क्या है, ताकि तुम खबरदार हो जाए, तुम्हें वॉर्न कर दिया जाए, और ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, अल्लाह का एहसास पैदा हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैंने गुनाह नहीं करना, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, अल्लाह मुझे देख रहा है, ये एहसास पैदा करने के लिए एक इंसान को एक नबी बना के, एक रसूल बना के अल्लाह ताला भेजता है। तो तुम्हें इस बात पे हैरत हो रही है, वला अल्लाकुम तुरहमून, अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा है ताकि तुम पर तुम रहम किए जाओ। रहम इसका मतलब कैसे होगा, जब तुम्हारे अंदर तकवा होगा, और जब तुम अल्लाह के पैगाम को इतना सीरियसली लो कि डर जाओ इस बात से, बचने की कोशिश करो अजाबों से। फकज़्ज़बूहु, तो उन्होंने झुटला दिया उसको, उन्होंने कहा कि हमने नहीं मानना। अब बात इतनी सिंपल नहीं हुई थी, ऑफ कोर्स 950 इयर्स की मुसलसल तबलीग हुई थी, उसके बाद भी वो झुटलाते ही रहे, इतनी लंबी तबलीग, इतना लंबा अरसा किसी और नबी को नहीं मिला तबलीग के लिए जितना नूह अलैहि सलाम को। अब सोच लें उनका सबर कितना होगा, कितना सबर होगा। हमें तो कोई एक दफा कोई आगे से कुछ सुना देना तुम्हारा सबर बिल्कुल खत्म हो जाता है, कहते हैं अब नहीं मैंने ये काम करना। लेकिन 950 इयर्स के बाद उन्होंने ये दुआ की थी, रब्बी इन्नी मगलूब उन फंतसर, ये सूरह नूह में आता है ना, मिल्ला मैं मगलूब हो गया हूँ, तुम मेरी मदद कर रहा था। तो एक नूह अलैहिस्सलाम की आह थी कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को डबो दिया, अनजई ना हूं तो हमने उसको निजात दी, वल्लदीना माहू फिल फुल्क, और जो उसके साथ थे फुल्क में, जो उसके साथ कश्ती में थे, ये कौन लोग थे उनके साथ? रिश्तेदार, खानदान अपना। इसमें क्राइटेरिया रिश्तेदारी नहीं था, क्योंकि नूह अलैहि सलाम का तो एक बेटा डूब गया था। इसमें क्राइटेरिया क्या था नूह अलैहि सलाम का कश्ती बनाने में, कश्ती में साथ होने में क्या था क्राइटेरिया? ईमान। नूह अलैहि सलाम के साथ वही लोग थे जो ईमान में उनके साथी थे। इसका मतलब कई दफा ईमान का रिश्ता जो है ना, इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि खून के रिश्ते के भी ऊपर आ जाता है। खून का रिश्ता डूब गया, साथ कौन रहे नूह अलैहि सलाम के? जो ईमान में उनके साथ थे, चाहे उनके अपने बच्चे थे, बाकी बेटे थे, अपने खानदानों या गैर लोगों, आज वो साथ हैं। अल्लाह ताला बता देता है कि कौन सा रिश्ता सबसे ऊपर है। तो वह अग्रकनल्लदीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने गर्क कर दिया उन लोगों को, बिल्कुल ड्राउन हो गए वो लोग, ख़त्म हो गए, जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया था, जिन्होंने हमारी आयात को नहीं माना था। इन्नहुम कानू कौमन अमीन, ये लोग अंधे थे, ये अकल के अंधे लोग थे, जिन्होंने अकल से काम नहीं लिया। तो पूरे उस वक़्त जितनी भी इंसानियत थी ना, सब डूब गई थी एक आदमी की पुकार पे, एक आदमी की आह पे। एक आदमी पूरी कौम पे कितना भारी था, जिसको वो कौम हल्का समझती थी, कोई कदर कीमत नहीं करती थी, मार मार के नूह अलैहि सलाम को उनके घर पे फेंक जाते थे। अल्लाह की नज़र में वो कितना बुलंद था। ज़रूरी नहीं होता इंसान जिसको जितना समझ रहे हो वो भी उतना हो। अल्लाह की नज़र में कोई क्या है? अल्लाह के यहाँ क्राइटेरियाज डिफरेंट है। अल्लाह की नज़र में तो ये हाल था कि एक दफ़ा फरियाद की है नूह अलैहि सलाम ने और गर्क हो गए हैं सारे इंसान। तो जिसने रब की खातिर देखें अपनी जिंदगी लगा दी, अल्लाह ताला ने कैसी फिर कदरदानी की उसकी। अल्लाह अकबर। और आप ये भी देख लें कि जब ये कश्ती बना रहे थे ना, इनका मजाक कर रहे थे जो लोग साथ से गुजरते थे कि कश्ती किधर चलाओगे, इस मट्टी में चलाओगे, सहरा में कश्ती चलाओगे? तो हाँ, जब रब चाहे ना तो कश्ती को समंदर में नहीं ले जाना पड़ता, समंदर खुद चल के आ जाता है, फिर कश्ती उसमें चलती है। ये अल्लाह की कुव्वत है। अल्लाह अकबर। चल, ये कौम कहाँ पे थी? ये इराक में थी, ये कौम इराक के रहने वाले थे। अब यहाँ पे जो अमीन की बात आई है ना, ये भी हमें बहुत इस चीज़ के ऊपर देखने की ज़रूरत है, इसलिए कि आँख के अंधे के साथ ना हम बहुत हमदर्दी करते हैं, सोचते हैं हाय बेचारा। लेकिन आँख का अंधा होना कम खतरनाक है। जब दिल अंधा हो जाता है ना, हक उसको नज़र ही नहीं आता, बात समझ ही नहीं आती, दिल में कोई बात जाती ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो बहुत ज़्यादा काबिल रहम है, उसको हेल्प की ज़रूरत है। आप सिर्फ आँख के अंधे की हेल्प करते हैं ना, इसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। इसलिए कि इसके पास आँखें हैं, ये मादी आँखें तो हैं, फिजिकल तो हैं, दिल की आँख बंद हो गई है, क्योंकि जानना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहता, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कबूल करना ही नहीं चाहता, ये दिल का अंधा हो चुका है। इसके बाद स्टोरी है कौम आद की। कौम आद के पास कौन से पैगंबर आए? हूद अलैहिस्सलाम। अब आपको ना ये बात पूरी याद होनी चाहिए कि इस कौम के पास कौन से पैगंबर आए। कौम नूह का तो कोई नाम नहीं है, इसलिए वो तो आसान ही है, कौम नूह तो नूह अलैहिस्सलाम आए। लेकिन आद के पास हूद अलैहिस्सलाम आए, समूद के पास साले अलैहिस्सलाम है, उनका हम बाद में पढ़ेंगे। अब आद असल में एक आदमी का नाम था जो नूह अलैहिस्सलाम की ही जनरेशन में आगे था। अब देखें, जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ लोग थे वो सारे मुस्लिम थे ना, सब इस्लाम के पर, सारे बड़े अच्छे नेक लोग थे। लेकिन जब इनकी भी जनरेशन आगे बढ़ती गई तो नूह अलैहिस्सलाम की तकरीबन कहते हैं फिफ्थ जनरेशन में जाके उनके बेटा जो साम था ना, उसकी औलाद में, फिफ्थ जनरेशन में जाके ये कौम आद थी। एक आदमी था जिसका नाम था आद, तो उसी से ही कौम आद पूरी बनी। उनके बारे में आता ना इरम ज़ात लियामाद, इरम भी इनको कहा जाता है कौम आद को, क्योंकि इनके एक आद के एक दादा का नाम इरम था, लड़कियों के नाम ज्यादातर इरम रखते हैं, लेकिन आद के दादा का नाम था। तो ये जो कौम थी ये यमन में बसी भी थी, और ये भी इसके 13 ख़ानदान थे, इनकी बस्तियां थी, और बहुत ये खुशहाल लोग थे। सोचिए अल्लाह ताला ने एक कश्ती में जाने वालों को, जिस वक्त उस वक्त पानी पानी था, कहीं ज़मीन भी नज़र नहीं आ रही थी, उनको कितनी प्रॉस्पेरिटी दी, कितनी उनको खुशहाली दी कि उनकी इतनी जनरेशन के बाद पांचवीं जनरेशन के में जाके इतनी खुशहाली थी कि ज़मीन सरसब्ज व शादाब थी, बागात थे इनके लिए, शानदार महल्लात थे, और इनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था अल्लाह ताला ने, इतनी इनकी हाइट लंबी थी, बहुत इन्हें कदोकामत वाले थे। अल्लाती लम युखलक मिस्लुह फिल बिलाद है ना, कि अल्लाह ताला ने ऐसा किसी को भी नहीं बनाया जैसे इनको बनाया था, इतने ये ताकतवर लोग थे। तो नियमतों के दरवाजे अल्लाह ने इनके लिए खोल दिए थे, कहाँ वो इंसान सोच भी नहीं सकता, इतने थोड़े से लोग जो बेसरो सामानी की हालत में एक शिप के अंदर जा रहे हैं, इनकी नस्ल के अंदर इतने खुशहाली आ जाएगी। ये वो तो फ़ख्र किया करते थे कि हम जैसा तो कोई है ही नहीं, और वाकई अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें उनको दी थी। लेकिन फिर इन्हीं नेमतों के, इसी कुव्वत और शान और दौलत के नशे के अंदर आके इन्होंने बस अपनी मनमानी शुरू कर दी, इन्होंने शिर्क शुरू कर दिया, दोबारा बुत परस्ती की तरफ आ गए, जिसकी वजह से इनके जो बड़े बड़े पीछे थे कौम नूह भी, तो ज़ाहिर है उन्हीं की जनरेशन में से थे, तो वो डूब गए। अब इन्होंने, हालांकि इन तक किससे पहुंचते थे लेकिन फिर भी ये नसीहत नहीं लेते थे। तो वह इला आदिन अखाहुम हूदन, आद के पास इनके भाई हूद को भेजा। यहाँ पे लफ्ज़ नहीं है, इला का मतलब ही है कि तरफ, उनके आद के, उनके भाई हूद को, यानी अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया हूद अलैहिस्सलाम को। उन्होंने भी क्या फरमाया, काल या कौम अबदुल्ला, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। कितना सिंपल मैसेज है, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, नहीं तुम्हारा कोई इलाह इसके सिवा। अब हम कहते हैं हमें तो पहले पूरे पूरे लेक्चर हमें आए तो फिर हम किसी को बताएं, इतनी सी बात थी, इतना सा पैगाम है, अफला तत्तकून, क्या भला तुम तकवा इख्तियार करोगे नहीं, क्या तुम डर नहीं जाओगे फिर इसके बाद। قال الملا الذين كفروا, अब इनके भी जो मला थे, इनके भी जो सरदार थे ना, उन्होंने ही देखें आगे से उल्टे जवाब दिए। الذين كفروا, जिन्होंने कुफर किया, इसका मतलब है हो सकता है कि कोई उनमें से ईमान वाले भी हों, जो सरदार ईमान भी ले आए हों, क्योंकि ये स्पेसिफिक यहाँ पे कहा गया, वहाँ पे नहीं कहा गया नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी में, मगर इसमें कहा गया कि सरदार जिन्होंने कुफर किया, मिन कौमी, उसकी कौम में से, इन्ना लनराका फी सफाहतिन, हम तो तुझे देखते हैं कि तू बड़ा अकल से खाली है, यू आर जस्ट क्रेजी, तुम तो बेवकूफ़ हो, हम तो तुम्हारे अंदर कोई अकल ही नहीं देखते। वा इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, और हम समझते हैं, हम गुमान करते हैं, हमें यकीन है कि तुम झूठों में से हो। अब क्या बेवकूफ़ी क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि एक खुदा की तरफ आओ, तो ये उनको बेवकूफ़ी लग रही है। जैसे आज भी कोई दीन की तरफ आता है ना तो लोग कहते हैं ये क्रेज़ी हो गया, हालांकि उसमें क्रेज़ी होने की क्या बात है, और हम तो समझते हैं कि तुम झूठे हो, और उनको झूठ का भी इल्ज़ाम लगा दिया। और जो रोश ज़माने में भी जो एलिटिस्ट होते हैं वो इस तरह की बातें करने लगते हैं। قال يا قوم ليس بي سفاهة, उन्होंने कहा है मेरी कौम मेरे अंदर कोई हमाकत नहीं है, ये नहीं कहा तुम जो ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम झूठे हो गए, तुम हो गए अहमक, तुम हो गए ये, ऐसी कोई बात भी नहीं की, मेरे अंदर कोई किसी किस्म की वह हमाकत नहीं, वाला किन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, अब कितनी पोलाइट उनकी बात लगती है ना, कि मैं तो बस एक रसूल हूँ रब्बिल आलमीन की तरफ से, मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं तुम्हें पैगाम पहुँचा दूँ और रब का पैगाम पहुँचा दूँ, उबल्लिगुकुम रिसालाती रब्बी, मैं पहुँचाता हूँ अपने रब के पैगाम तुमको, अना लकुम नासिहुन अमीन, और मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, अमानतदार हूँ। आप देखें रसूल क्या बताते हैं कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, पहले भी ये नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी खैर ख्वाही कर रहा हूँ, इसका मतलब है जिसने दावत का काम करना हो ना, लोगों को दीन की तरफ बुलाने का, अल्लाह की तरफ बुलाने का, उसके अंदर सबसे फर्स्ट मेन उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? लोगों की खैर ख्वाही। अगर आपके अंदर लोगों की खैर ख्वाही के जज्बात नहीं है ना, तो आप ये काम नहीं कर सकते, फिर ऊपर ऊपर का ही काम होगा। असल है कि आप फील करें, अपने अंदर पेन फील करें कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं इन तक खैर ख्वाही क्या होती है, उनकी खैर चाहना, वेल विशर, मैं तुम्हारा वेल विशर हूं, मैं तुम्हारी खैर चाहता हूं। क्या हमारे अंदर ऐसी खैर ख्वाही है लोगों के लिए? जब ये नहीं होती ना, ऐसे ही काम कर रहे होते हैं, तो फिर यही होता है कि उसका फॉल्ट नजर आ रहा है, उसके ऊपर ऐब निकाल रहे हैं, उसके ऐब निकाल रहे हैं, हमें वो भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, उसने ऐसी क्यों बात कर, क्योंकि सच्ची खैर ख्वाही दिल में है नहीं, बस उठ के ऐसे ही शुरू कर दिया काम, कि चलो मैं भी जरा थोड़ा कुछ बन के दिखा दूं कि मैं भी कोई बड़ी चीज हूं, मेरे पास भी कोई नॉलेज है। ये नॉलेज की बातें नहीं होती, ये खैर ख्वाही की बात। ये नहीं उन्होंने कहा कि मेरे पास नॉलेज बहुत है, उन्होंने कहा मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, दिस इज रिक्वायरमेंट। तो और अमानतदार, यानी जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है, मैं उसको पूरा करने वाला हूं। क्या जिम्मेदारी डाली गई होती है रसूल पे? कि वो अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचा दें एज इट इज। तो मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं अल्लाह का ही पैगाम तुम तक पहुंचा रहा हूँ, और एज इट इज पहुंचा रहा हूँ। क्योंकि देखिए अमानतदारी ना, जॉब में भी अमानतदारी होती है, ये रसूल की जॉब है ना, जिम्मेदारी है, इसमें भी अमानतदारी होती है, ये सिर्फ माल में अमानतदारी की बात नहीं होती। मैं अपनी जॉब फुली कर रहा हूँ, मैं अमानतदार हूँ, मुझे जो अल्लाह ने कहा मैं वैसे ही कर रहा हूँ। अब आजिब तुम अनजया कुम जिकुम मे रबी को, अब देखें इनका भी प्रॉब्लम यही था कि उनको ये लग रहा था ये क्यों इंसान क्यों आ गया हमारे पास। हर दफा हर दौर में लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम रहा है, हर दौर में लोग इस मसले में रहे, ऐसा क्यों होता है? एक ही स्टेटमेंट हर दौर में लोगों की रही है, एक ही तरह की बातें, क्यों कैसे ऐसे हो जाता है? इसलिए कि पीछे जो सोर्स है ना, जहां से फीड की जाती हैं बातें, वो एक ही है, वो है शैतान। कहते हैं हमारे पास एक इंसान नसीहत करने के लिए आ जाए, एक इंसान अल्लाह की तरफ से बना के भेज दिया जाए, लियुन दिरकुन, ताकि वो खबरदार करे तुमको, वज करो और याद करो। अच्छा यहां तक पहले भी बात आई थी ना, तुम्हें ये बात अजीब लगती है कि एक इंसान तुम्हारे पास आ जाए और तुम्हें इंतजार करे, तुम्हें वॉर्न करे, अपने रब का जिक्र, अपने रब की नसीहत लेके तुम्हारे पास आए, याद करो, जरा याद तो करो। इज जालकुम खुलफा मिन बाद कौमिन, कि तुम्हें तो अल्लाह ने खलीफा जानशीन बनाया नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि इतने से लोग बेसरो सामानी के आलम के अंदर चले और कितनी अल्लाह ने तरक्कियाँ दे दी, तुम उनके जानशीन हो, उसके बाद तुम कितनी तुम्हें अल्लाह ताला ने नेमतें अता फरमाई। इसलिए इसका मतलब है कि वो लोग जानते थे कि नूह अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, वो जो उनको पता था कौम नूह के बारे में, ऐसे नहीं थे, वो भूले नहीं थे। وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً, اور زیادہ دی ساخت میں, خلق میں, خلق کیا ہے یعنی جسامت میں, بسطہ فراخی دی تمہیں, یعنی تمہیں ویسے بھی اللہ نے پھلنے پھولنے کا موقع دیا, لیکن تمہاری جسامت میں بھی دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اسٹرانگ بنایا۔ ڈیل ڈول میں نا یہ بہت ان کا پھیلاؤ تھا, بہت زیادہ بڑے بڑے لوگ تھے, اسی لیے تو جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پام ٹریز پڑے ہوئے, اتنے لمبے تھے۔ تو فذکروا اللہ, اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ یاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ شکر گزاری کے لیے۔ یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اللہ نے جو نعمتیں آپ کے اوپر کی ہیں نا, ان کو یاد کرنا اور اس سے اللہ کی تعریف کرنا۔ یہ زبان سے شکر گزاری ہے, دل میں شکر گزاری کیا ہوتا ہے, ان کا احساس ہونا کہ جو ہے نا اللہ نے مجھے یہ نعمت دی۔ تو تم نا اللہ کی نعمتوں کی یاد کرو, ذکر کیا کرو اللہ کی نعمتوں کا, یہ اللہ نے تمہارے پر کتنے بڑے احسان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمت کو بیان کرنا شکر ہے اور اس کا چھوڑنا کفر ہے۔ نہیں, آپ کبھی یاد ہی نہ کریں کہ اللہ نے میرے اوپر کوئی نعمت کی ہے, کبھی اس کو بیان ہی نہ کریں, کبھی سوچے ہی نہیں اس بات کو۔ تو शुक्र हम सोचते हैं सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह देना शुक्र है, नहीं, वो भी एक शुक्र को बयान करना है, लेकिन कभी जिक्र किया करें, जो जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपके ऊपर की हैं उनको बार बार मेंशन किया करें, क्योंकि इंसान अक्सर गाफिल हो जाता है, इंसान अक्सर भूल जाता है, और इसकी वजह से वो कभी नेमतों को, यानी उसको कभी याद ही नहीं रहती। आप देखें, गौर करें, हवा के चलने पे कोई शुक्र नहीं करता, हालांकि इतनी बड़ी नेमत है कि अगर जरा देर के लिए बंद हो जाए ना तो इंसान मर जाए। अगर किसी कुएं में किसी को कैद कर दिया जाए तो वो गम से हलकान हो जाएगा, फिर अगर उस मुसीबत से उसको निकाल लिया जाए तो उसको बहुत बड़ी नेमत समझेगा, उस पर बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। कितनी बड़ी जहालत की बात है कि हम शुक्र कब करते हैं जब नेमत छिन जाती है, हम उसका बयान कब करते हैं जब नेमत हमारे पास नहीं रहती, जब अल्लाह ताला वापस ले लेता है। जब नेमत है तब शुक्र अदा करें, हर हाल में शुक्र तब अदा करें। आंखों वाला आंखों का शुक्र अदा नहीं करता, लेकिन जब अंधा हो जाता है ना और उसकी नजर फिर दोबारा लौटाई जाती है तो तब वो कहता है हाय कितनी बड़ी नेमत मुझे मिल गई, तब शुक्र अदा कर रहा होता है। तो ये तो बिल्कुल ही बेवकूफाना बात है ना, ये ऐसे ही है जैसे कोई गुलाम है जिसको रोज पिटाई होती हो, रोज मार पड़ती हो, एक दिन मारना पड़े तो वो शुक्र अदा करे और उसको नेमत समझे, और अगर उसको बिल्कुल ही ना मार पड़े तो उसके ऊपर वो कहे कि अब तो मैं बहुत बड़ी चीज़ हो गया, गरूर उसमें आ जाए, शुक्र करना ही भूल जाए, छोड़ दे। तो ज़रूरी है मार पड़ना तभी शुक्र अदा करेंगे जब एक दिन मारनी पड़ेगी, जब नेमत छिनेगी तभी शुक्र अदा करेंगे। और बाज लोग सिर्फ माल को ही नेमत समझते हैं, वो बाकी नेमतों को भूल ही जाते हैं। तो जिक्र करो अल्लाह की नेमत का, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ, यानी इसका मतलब कामयाबी किसको मिलती है, जो नेमतों को याद करता रहता है, जो अल्लाह के एहसानात को याद करता रहता है। कालू अजितना लिनाबुदा अल्लाह वहदहू, उन्होंने कहा क्या तू आया है हमारे पास कि हम इबादत करें एक अल्लाह की, सिर्फ एक की हम इबादत करें। कि उनके लिए यही बहुत बड़ी अजीब बात थी, सब को छोड़ के बस हम एक को ही इबादत करें। वह नजर माँ का ना या बुदू अबाऊ ना, और हम छोड़ दें उनको जिनकी इबादत करते थे हमारे अबाऊ अजदाद, यानी हम तुम कहते हो कि हम उनका ना कोई जिक्र करें जिनकी हमारे अबाऊ अजदाद इबादत करते थे जिन बुतों की, हम तो तुम चाह रहे हो कि हम अपने बाप दादा के तरीकों को छोड़ के बस एक खुदा की इबादत शुरू कर दें, हमारे बड़ों की जो रस्में हैं उनको छोड़ दें, औलिया अल्लाह का जिक्र छोड़ दें, उनका जिक्र छोड़ दें, बस एक अल्लाह का करें। बाज लोगों को ये भी होता है कि एक अल्लाह का जिक्र क्यों करते हो, साथ औलिया अल्लाह का जरूर करो, वरना एक अल्लाह का जिक्र नहीं कम्प्लीट होता। इनके भी जो बुत थे वो औलिया अल्लाह ही थे, वो नेक ही लोग थे, ये कहते थे कि वो तुम चाहते हो कि हम उनको उनकी इबादत ही ना करें। फातिना अभी मात आयदुना कौन तमिन सौदिकीन, और जहालत की और बात देखो कि अपने लिए खुद ही अजाब मांगने लगे, बस ले आओ हमारे पास जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर तुम सच्चों में से हो, वाकई अगर तुम सच कहते हो ना कि अजाब आ जाएगा और तुम हमें डरा रहे हो कि ये अजाब तुम ऐसे हो जाएगा, तुम ऐसा करो हमारे पर अजाब ले आओ। मांगने वाले ने मांगा भी तो क्या, कौला कद वका अलैकुम मिन रब्बिकुम, हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया तहकीक पड़ चुकी तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, रिज सुन, रिज क्या अजाब, व गदब और गजब उसका, तुम्हारे पर तो वाके हो चुका। ये अगले दिन ही नहीं कह दिया, ये सिर्फ दो चार आयतें पढ़ के ये ना समझना कि वो एक दिन ये कहा तो अगले दिन उन्होंने ये कहा और फिर तीसरे दिन अजाब आ गया, बहुत बहुत लंबा टाइम इनको मोहलत का दिया जाता रहा, क्योंकि ये ब्रीफली आपको बताया जा रहा है, कुरान अभी आपको एक सिर्फ उनकी एक पिक्चर दिखा रहा है, इस एंगल से बता रहा है, तो आपको जो सिर्फ काम की बातें उस में बताई गई कि उसके बाद उनके ऊपर अजाब आ गया और हूद अलैहिस्सलाम ने कह दिया तुम्हारे पर वाकई हो चुका है, ठीक है अगर तुम अजाब ही चाहते हो तो अजाब तुम्हारे पर अब यानी आके रहेगा। अतु जादिलूना नी फी अस्मा इन सम्मई तुमूहा, तुम मुझसे इसलिए लड़ते हो इन नामों पे जो तुमने खुद ही रख लिए, अंतुम व अबाकुम, तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने, उन नामों पे तुम मेरे से लड़ते हो, कौन से नाम थे ये, बुतों के नाम खुद ही रख लिए, खुद ही सोच लिया कि ये हमें रिस्क देता है, ये हमें दौलत देता है, ये हमें औलाद देता है, ये हमारे काम बनाता है, ये हमारी मुसीबतें कर। आज आप हिंदुओं में देखें ना, उन्होंने उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, उन्होंने एक देवी को रखा हुआ कि ये मुसीबतें डालती है। एक देवी है लक्ष्मी उनकी जो दौलत देती है, एक देवी है कुछ और काम करती है, कोई देवता है वो कुछ और काम करता है। ये किसने उनको बताया? कौन सी कोई वही आई थी उनके पास? कहां से पता चले? खुद ही रख लिए, खुद बाप दादा ने उनकी, बाजों ने बाज नाम उन्होंने रख लिया, बाज खुद रख ली। मा नज़ल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इसके साथ तो कोई दलील ही नहीं उतारी। कहां पे अल्लाह ताला ने कोई सनद उतारी हो, कोई बात बताई हो कि हाँ ये चीज देगा? अल्लाह ताला माफ हमें भी करे, हमने भी तो साय से नाम रख लिए, किसी को कह दिया ये दाता है, ये दाता साहब है, दाता देने वाला होता है, ये देने वाला है। किसी को कह दिया ये शकरगंज है, किसी को कह दिया ये गौसे आजम है। ये किसने आपको बताए? खुद ही रख लिया नाम कि ये फरियाद रस है, ये देने वाला है, ये गंज बख्श है, ये गरीब नवाज है। क्या क्या नाम खुद ही रखे हैं हमने, क्या अल्लाह ने उतारे हैं? याद रखें, दीन के मामले में देखना क्या है कि अल्लाह ताला ने कोई सुल्तान उतारी है इस पे या नहीं, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है या नहीं, हमारे पास इसकी दलील है या नहीं। कोई पूछे कि ये क्यों करते हो, तो ये नहीं आंसर होना चाहिए बस वो जो हमारे बड़े करते थे, वो जो ऐसा भी करता है। नहीं, दलील लेकर आओ, अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया दीन के मामले में भी, कह रही हूं आपको, कोई भी दीन का काम करने में दिस शुड बी योर क्राइटेरिया। तो अब कोई नाम तो अल्लाह ताला ने तो नहीं दिए थे ऐसे कि जाओ जाके, आज कोई कहते हैं कि खिजर अलैहिस्सलाम के वो आंधियों के ऊपर मुकर्रर, ये कहां से तुमने सुन लिया, किधर से तुम्हारे पास आया? बस नाम खुद ही रख लिए, खुद ही किसी को कुछ दे दिया, खुद ही किसी को कुछ और चीज दे दी। अल्लाह अकबर। फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। तुम इंतजार करो, ठीक है, अब अजाब का तुम अजाब मांग रहे हो ना, तो इंतजार करो, मैं भी इंतजार करने वालों में से हूँ। अनजैना हो, बस निजात दे दी हमने उसको, वल्लज़ीना माहु बिरहमत मिन्ना, अपनी रहमत के साथ उसको और जो उसके साथ थे लोग उनको। अब अगेन यहाँ पे सात लोग दोस्त और हमसाये और रिश्तेदार की बात नहीं है, माँ कौन है जो ईमान में साथ है। अल्लाह ने उनको बचा लिया, उनका इंतजाम अल्लाह ताला ने पहले किया, उसके बाद वाताना दाबिरुल्लदीना कज़्ज़बू बिआयातिना, फिर अल्लाह ने जड़ काट दी। जड़ की बात क्यों आती है बार बार, आप कौमों में देखेंगे जड़ की बात आती है कि जड़ उनकी काट दी, इसलिए कि जड़ से दोबारा पौधा उगता है ना, यानी इनके बच्चे बच्चे को अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया, इनसे आगे इनकी नस्ल भी ना फले फूले। वरना तो लोगों को ये होता है ना, चलो हम नहीं बचे, हमारे बच्चे तो आगे ज़मीन के अंदर रहेंगे और भले फले फूलेंगे, तो उनके लिए इतना काफ़ी होता है। लेकिन अगर किसी की नस्ल ख़त्म हो जाए ना, तो वो उसके लिए बड़ी तकलीफ दे बात होती है कि हमारी नस्ल ही ख़त्म हो गई, दुनिया से ही इनका नाम मिट गया, वाइप आउट हो गए। तो अल्लाह ने इनकी जड़ तक काट दी। जैसे जब अल्लाह की पकड़ आती है ना, तो ऐसी आती है कि फिर एक भी नहीं बचता। वमा कानु मुमिनीन, और वो ईमान लाने वाले नहीं थे, इनका कसूर ये था, ये हमारी आयतों को जुटलाते थे और ईमान नहीं लेकर आए। ईमान कितनी बड़ी दौलत है। ये थी रसूलों की स्ट्रगल, ये थे उनके काम, ये थे वो मिशन जिन पे रसूल डटे रहे। और ये हिस्ट्री बताती है कि इस सारी इन सारे किस्सों में कामयाब लोग वही हुए जिन्होंने अल्लाह ताला की बात को कबूल कर लिया, और जिन्होंने कबूल नहीं किया उनका अंजाम भी बताती है। अल्लाह ताला हमें ईमान वालों में शामिल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين